जोहार श्रोताओं, मैं सरस्वती आपके समक्ष एक बार फिर लेकर आई हूँ महिला हिंसा अभियान के ऊपर चलाई जाने वाली एक नई प्रस्तुति। आप लोगों ने पिछले हफ्ते सुना कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा आखिर है क्या, उसके कारण जाने और उसी के साथ साथ उसके अलग अलग रूप से भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। उसी प्रकार आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक नई कहानी और आज का विषय है महिलाओं के ऊपर हो रही घरेलू हिंसा। साथ ही हम सुनेंगे घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला की संघर्ष की कहानी। तो आइए सुनते हैं इसी विषय पर ऑक्सफैम इंडिया के साथ साझेदारी में AIR रेनबो द्वारा प्रस्तुत एक और पेशकश।
हमारे देश में घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है और हर एक महिला को इस हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक शोध के अनुसार लगभग 39% महिलाओं को घरेलू हिंसा को झेलना पड़ता है, यानी हर 3 में से एक विवाहित महिला को किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा को सहन करना पड़ा है। घरेलू हिंसा के कई प्रकार होते हैं, शारीरिक, मानसिक या फिर यौन हिंसा, और इसका भयावह रूप हमें देखने को मिलता है दहेज प्रताड़ना के रूप में। दोस्तों, आज भी हमारे देश में हर 90 मिनट में एक दहेज हत्या होती है। दुख तो इस बात का है दोस्तों कि हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही सहने की शिक्षा दी जाती है और ये सहनशीलता ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अब समय है इस चुप्पी को तोड़ने का, आवाज को उठाने का और कुछ कर गुजरने का। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में हर एक महिला आजादी से जी सके और उसे कभी किसी प्रकार की हिंसा का सामना न करना पड़े, और इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए हम सभी को कुछ न कुछ करना होगा, कुछ कदम उठाने ही होंगे। ऐसा ही एक कदम उठाया था मुबीना ने। तो आइए चलते हैं, मुबीना से बात करते हैं फोन पर और सुनते हैं मुबीना की कहानी मुबीना की ही जुबानी। मुबीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम फासलों को मिटाना है में।
नमस्कार दोस्तों।
जी मुबीना, क्या आप हमारे सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि आप कहाँ रहती हैं, क्या काम करती हैं, अपने बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं को बताएं।
मैं सभी को बताना चाहूंगी, मेरा नाम मुबीना है और मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में रहने वाली हूँ।
जी,
मैं एक मुस्लिम परिवार की लड़की हूँ। बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मेरी माँ ने बहुत संघर्ष करके किसी तरह से मुझे पढ़ाया लिखाया।
जी,
लेकिन पढ़ाई में शुरुआत से ही मेरे घर में जो दिक्कतें आई, मेरी दादी ने, मेरे और परिवार के लोगों ने कहा कि लड़की है, क्यों पढ़ाओगे, क्या करोगे पढ़ा के इसको। लेकिन मेरी माँ ने किसी की भी बात नहीं सुनी और मुझे किसी तरह से पढ़ाया लिखाया। लेकिन मेरी माँ भी एक औरत थी जिसपे परिवार, समाज, सारे लोगों का इतना दबाव था। आखिर में मेरी माँ को मजबूरी में मेरी 13 साल की उम्र में ही शादी करनी पड़ी और मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन तो ठीक से रही, लेकिन वही दहेज की मुझे ताने दिन रात मिलने लगे। काफी मेरे साथ जरा जरा सी बात को लेकर मारपीट होने लगी, क्योंकि एक तो कम उम्र और बहाने भी उनके पास बहुत सारे थे। जब कम उम्र में मेरी शादी कर दी तो मुझे रोटी भी बनाना नहीं आएगा, तो मेरे साथ जाहिर है कि मारपीट होगी।
और पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि 13 साल की उम्र में ही आपकी शादी कर दी गई। अन्याय जो आपके साथ हुआ, मारपीट हुई आपके साथ में, वहाँ पे जैसा कि आपने कहा ताने मारे गए, तो इस अन्याय को रोकने के लिए आपने क्या किया?
मैंने पहले अपने घर में ये सारी बातें बताई।
जी,
लेकिन मेरी माँ ने कई बार मुझे समझा बुझा के भेज दिया, क्योंकि मेरी माँ को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद फिर मैं अपने मायके वापस आई 2008 में, और 2008 में ही मेरा एक बेटा भी हुआ।
अच्छा,
17 साल की ही उम्र में मैंने एक बेटे को भी जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले मेरे घर आके रहने लगे, मेरे घर में ही मेरे साथ इतनी मारपीट होने लगी जिसकी कोई हद नहीं। ये सब मेरी माँ ने देखा और उन्होंने भी फिर बर्दाश्त नहीं किया, उन लोगों को वापस कर दिया कि अब हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। कई साल, 2-3 साल तक मैं अपने मायके में रही और मेरी बहन पढ़ाती थी एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इसी तरह से मेरा खर्चा पूरा करती थी। लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ मुझे भी यह एहसास होने लगा था कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि आए दिन एक तो ये डर मेरे अंदर बना हुआ था कि वो लोग आए दिन मेरे साथ मारपीट मेरे हल्के में भी करते थे आके। इसलिए मैंने उनके ऊपर केस लगाया 498A का, दूसरी केस 125 का।
अच्छा,
ये दोनों केस मेरे काफी लंबे समय तक चले और 2-3 साल के संघर्षों के बाद जब मैंने काम की शुरुआत की, मैंने एक संस्था में काम ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में ही, एक संगठन है बनांगना जो चित्रकूट और बांदा जिले में खासकर महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए काम करता है।
अच्छा।
उस संस्था में मैंने काम की शुरुआत की और अपने केस दोनों मैंने उठाने के बाद मैंने डायरेक्ट तलाक उनसे ली, क्योंकि मैं पहले मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने केस इसलिए किए थे कि मुझे न्याय ससुराल में रह कर मिले, पर जैसे जैसे मैं काम करने लगी और मेरी सोच ये बदली कि नहीं, मेरी जिंदगी उन लोगों के साथ नहीं है, बल्कि जब मैं खुद कमा खा के अपनी जिंदगी पार कर सकती हूँ तो मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों रहूँ। और फिर मैंने फैसला लिया और मैंने तलाक लिया और अपने बच्चे को आज मैं खुद पालती।
मुबीना, बहुत हिम्मत का आपने काम किया और खासतौर पे जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आती हैं, उस समाज में हम आपके हौसले को सलाम करते हैं। मुबीना जी, आज जिंदगी कैसी बीत रही है ये अब आपसे जानना चाहते हैं।
पहले की जिंदगी में मैं देखती थी कि परिवार का भी दबाव, ससुराल का भी दबाव, मारपीट की, गाली गलौज की, एक एक पैसे के लिए, खर्चे के लिए मुझे परेशान किया जाता था। और आज मैं खुद कमा के अपनी जिंदगी तो सवार रही हूँ, साथ में मैं अपने परिवार, मतलब अपने माता पिता को भी देख रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे एक पिंजरे से कोई पंछी आजाद कर दिया जाता है, आज मैं इस तरह से अपने आप को महसूस करती हूँ।
मुबीना जी, समय की हमारे पास कमी है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगी?
दोस्तों, ये हिंसा सबके घर में होती है, कानून भी बना है घरेलू हिंसा कानून, उसका भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कानून बनता है वो पुरुषों के खिलाफ नहीं बनता, हिंसा को रोकने के खिलाफ बनता है, हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए कानून बनते हैं। और जब तक हम सारे लोग एक साथ जुटकर महिला हिंसा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ये चुप्पी टूटने वाली नहीं है और ना ही ये हिंसा खत्म होने वाली है।
मुबीना जी, हमारे इस कार्यक्रम में मुखातिब होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुबीना ने एक कदम उठाया और न केवल अपने साथ हो रही हिंसा को रोका बल्कि कई और महिलाओं को भी उसने सहारा दिया। मुबीना के इस हौसले को हम सबका सलाम।
तो श्रोताओं, आज आपने सुना कि घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराई किस तरह से महिलाओं का जीवन नष्ट करती है, पर आपने यह भी जाना कि यदि पीड़ित महिलाएं इस बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर विरोध करें तो वो आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकती हैं। एक बार फिर मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को हमारी यह पेशकश पसंद आई। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगी ऑक्सफैम इंडिया और AIR रेनबो का, जिन्होंने झारखंड मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए इतनी ज्ञान पूर्वक पेशकश को चलाने की अनुमति दी। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।